तो परमात्मा ने एक धक्का दिया, उसको पड़ गया, पड़ के उसके ब्रह्मट्टी होगी। मारा तुक्का मुगल को लग्या जुलैदी ही के, गरीब दास उस मुगल उत पड़ा उल्ट दो बी ही के। सात सिकंदर उठ कड़े है कदम पोस कुर्बान, गरीब दास मंजन महल भरकुटी में ससिभान। अब परमात्मा फिर खड़े हुए तो उनके पूर्ण रूप से परमात्मा का एक बहुत सुंदर शरीर दिखाई दिया, उनके अंदर एक बहुत तेज नजर आया परमात्मा का। तो कहते हैं सिकंदर लोदी फिर चरणों में गिर गए कि हे भगवान, ये मेरा धार्मिक पीर है और सब मुसलमान मेरे से उलट हो जाएंगे, हे प्रभु इसकी जान बख्श दो। तो क्या बोले, बख्शो या के प्राणे को तुम अल्लाह की जाते, आप तो परमात्मा हो, हे भगवान इस मेरे पीर की जान बख्श दो। बख्शो या के प्राण को तुम अल्लाह की जाते, गरीब दास सा तक्की को उठत के तिक बात। उसके चूतनों पर लात मारी परमात्मा, खड़ा जीवित हो गया। क्या बताते हैं काजी, एक तकी चूतड़ पग लग गया वो बैठा हो गया बेग, गरीब दास उस मुगल के ये तुके का ही नेग, लातों का ही नेग। इस प्रकार परमात्मा ने उन सबको बहुत समझाया, फिर काफी देर फिर सत्संग किया मालिक ने, क्या समझाया, काजी राजी को हुआ ये गति हिति अल्लाह की रूह, गरीब दास छूटो नहीं यो लेखा दर्ब दूबर दू, काजी खिलस उठाए दे तजरो से तजरोजे की रीत, गरीब दास अल्लाह भजो हो यो समय जावेगा बीत। कहते तुम भगवान बज लो, क्यों पंगे उपा दे रहे हो, तुम जुल्म कर रहे हो, ये समय तुम्हारा बर्बाद हो रहा। परमात्मा फिर भी, क्योंकि उसके बच्चे हम, सुन मुल्ला तू मिलेगा उस नरक के माही, गरीब दास लख अर्ज करियो वा मुल्ला छूट नाही, वाचे कितने डाडा कर लियो तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी, तुम यहां जुल्म कर रहे हो। लाख अर्ज मुल्ला करे काजी करियो को होटे, गरीब दास उस दरबार में थरे निकलने पिछले खोटे। लाख अर्ज मुल्ला करो करियो चाहे काजी करियो करोड़े, गरीब दास अब वहां कोई नहीं संगी, मत झोटे बकरे तोड़े। कहते ना मारा इन, वहां कोई तेरा साथी नहीं होगा। कोट अर्ज मुल्ला कर चाहे काजी करियो अरब, गरीब दास ये ज्ञापन कटी और निकल पड़े वहां गर्भ। तुमने ऐसा जुलम किया, ज्ञापन गां काट दी उसका गर्भ भी नारा कट गया, न कमियो को सोची तुमने, ऐसा जुलम करे हुए एक में और दो दो खून कर रहे हो तुम। एक ममड़ी का खून है एक बच्चे का ब्यात, गरीब दास तुम कैसे बचोगे, खा गए सब आते। हे मालिक, देख अपने बच्चे समझ कर भगवान समझाया करते थे, पर ये महिमा के भूखों ने उस परमात्मा की एक नी चरण दी। काजी पढ़े कुरान को मुझे अंदेशा ओरे, गरीब दास उस नरक में, गरीब दास उस स्वर्ग में दरबार में हो कुन, हो खूनी नहीं खूनी को ठोड़े। कैसे उस स्वर्ग में तुझे ठिकाना नहीं है, जो ऐसे जुल्म करता चाहे हिंदू करे चाहे मुसलमान करे चाहे कोई प्राणी करे पाप, उसको स्वर्ग में ठिकाना नहीं है। क्या अनुवाद पढ़ाओ भाई, ब्राह्मण हिंदू देव है और मुल्ला मुसल का पीहीरी, गरीब दास उस स्वर्ग में तुम दोनों को हो तकसीर। तारे दोनों अबक्कल उतरेगा वहां पे, इन ब्राह्मणों का भी और वहां इन काजी और मुल्लाओं का भी। तुम यहां ही शेर भाग रहे हो, वहां कोई ना सुना तुम्हारी। एक काजी एक पंडिता, ये दीना दो विदिये दो दीने, गरीब दास विधि भेद सुने, तुम क्यों खाते हिंदू सीने। मुस्लिम मुसलमान के ये हिंदू भी ये ब्राह्मण भी मुर्गे खाया करते। हम एक बार वहां जगन्नाथपुरी में चले गए नु देखने खातिर, भगवान ने जैसे मंदिर बचाया था वो स्थान ठीक है कैसा है, तो वहां पूछा मैं, कहने लगे एक गाइड था हमारा, उससे पूछा मैं, अभी तुम क्या खाते हो यहाँ, तो कोई फसल होती नहीं। बोला मच्छी खाते हैं, तुम कौन हो, नाम बौद्ध ब्राह्मण है, तेरा गजब है तुम मच्छी खाते हो, बोला और यहाँ क्या खाए। हमारे ना दच्चा करती ब्राह्मण मांस मूस खाते, बोले सारे काम करे वहां पांडे, बोला और क्या खाए, यहाँ तो होती ही मच्छी है, अरे तेरा गजब हो। तो यहाँ कहते हैं मुसलमान को गाय बखी, हिंदू खाया सूरे, गरीब दास तुम दोनों से, ओ राम रही माधुरी। तुम्हारे तो निकट भगवान आओ को नहीं से खूनिया के। पंडित सिमटे पूरी के, काजी करी फिलाहारे, गरीब दास दो दीने की जुल है खोई दाद। अब ब्राह्मण भी इकट्ठे होकर फिर गए सिकंदर लोधी के पास, वीर सिंह बघेला तुम्हारी सुनता ना। फिर वहां गए ब्राह्मण, बोले कि हम इसके साथ एक वो करेंगे, हम इसको जान जाएंगे कि हम एक ऐसी क्रिया करेंगे। उन्होंने एक स्कीम बनाई कि ऐसे अपने एक भगवान की मूर्ति रखेंगे, एक बहुत प्लेटफार्म सा बनाकर चौकी रख के उसकी पत्थर की, और इधर हम बैठ कर भगवान की स्तुति करेंगे, एक तरफ ये कबीर करेगा, जिसकी तरफ वो भगवान उठकर आ जाएंगे वही उसकी भक्ति सच्ची होगी। अब सिकंदर लोधी बोला भी ठीक है, तुम आज जब फैसला कर लो, मैं भी आया हूँ, भाई क्रोण कितना शक्तिशाली है, थरे रोज के झंझट मिट जाएंगे। उन्होंने आदेश दे दिया। अब उन्होंने क्या किया, अब आपको परमात्मा की वाणी सुनाता हूं, फिर बाद में डिटेल बताऊंगा, थोड़ी सी देर का सत्संग आनंद आएगा। चार वेद सत शास्त्र वो काढ़े 18 प्राण, गरीब दास चर्चा करें आजुल्ले शैतान। क्या जा वो करेंगे शास्त्र करेंगे, जुल्ले जुलाहे तू शैतान क्यों झूठ बोलता है दुनिया के सामने, त्रिपोल पाड़ेंगे। कौन कहने लगे, ब्राह्मण लोग, तू जुल्हा शैतान है, मोमन लाया सी ही ते, गरीब दास उस पुरी में है, कौन है तुम्हारा मीत, तू एकल खोरा एकला रहे, तन दूजा नहीं सुहाए, गरीब दास का जी पंडित इब तन मारेंगे हराए। अब सारे मुल्ला वीर काजी पंडित सारे इकट्ठे हो गए और ने बोले अब तुझे हरा देंगे हम, आज तेरे को ज्ञान में पटक देंगे ठाक है। चार वेद सठ शास्त्र 18 प्राण की प्रीहित, गरीब दास पंडित कहे सुन जुल्हे मेरे मीत, ज्ञान धान स्नान कर सेवो सालग राम, गरीब दास पंडित कहे सुन जुल्हे वरियाम, बोले जुल्हा अगम गति ही सुन पंडित परवीने, गरीब दास ये पत्थर पटको तुम भजन करो लोली ही ने। परमात्मा कहता तुम वेद तो पढ़न लग रहे और ठाए फिर इन पत्थरों ने है तेरा गजब हुआ। परमात्मा कहते हैं वेद पढ़े पर भेद न जाने ये बाचे प्राण 18, वेद पढ़े और फिर उसका महिमा वेद में क्या रहस्य वो जानते नहीं, और फिर भी ये जड़ को अंधा पत्ते खवावे, भूल गया सिरदन हारा, कि तुम वेद भी पढ़ते हो उधर से इन पत्थरों की फिर भी पूजा करते फिरते हो, भगवान के निकट भी नहीं, तुम वेदों के अर्थों को नहीं समझ पा रही। अनंत कोट ब्रह्मा गए अंत कोट गए वेद, गरीब दास गति कोल अगम है कोई न जाने भेद, अंत कोट साल गए साथ सेवन हारे, गरीब दास वो अगम पंथ मुझ गुल्हे को दीदार, कहते उस परमात्मा के पाने का मेरे को भेद है तुम्हें नहीं है, परमात्मा कहते हैं गरीब कबीर साहब के बताते हैं। काजी पंडित सब गए साहसिक अंदर पासे, गरीब दास उस सरे में सबकी बुद्धि का नासे। कहते इतने सच्ची बात भगवान कह रहे हैं, वो बुद्धि प्रत्येक नहीं मान रहे परमात्मा की, वो काजी और पंडित। कबीर और रैदास को भक्ति बिगाड़ी मूले, गरीब दास दो नीचे हैं करते भक्ति अधूले। अब कहते हैं ये रविदास जी और कबीर जो है ये दोनों नीच हैं, ये भक्ति बिगाड़ते हैं, ये हमारी धार्मिकता धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ये कहते हैं देवता पूजन के नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश समर शक्ति नहीं, ये हमारी बेइज्जती करते हैं। हिंदू से नहीं राम राम, कहते ये ना था कि हिंदू न राम राम कहते ना मुसलमान न सलाम, ये तो सतसाए बोलते फिरे। हिंदू से नहीं राम राम, मुसलमान से नहीं सलाम, गरीब दास दो दीने बीच ये दोनों है अलाम, ये नकम्मे है दोनों के दोनों। उमटी काशी सब गई सट दर्शन खली हीले, गरीब दास दोनों नीच हैं इनको मारते क्या है ढीर, कहते मार दो सबको। दंडी सन्यासी ता सिम, दंडी सन्यासी ता सिमटे हैं बैरागे, गरीब दास ता कन फटे है भई सबन से लाग। ये दंडी स्वामी, ये दान ऋषि जैसे ऋषि और इसके गुरु जी ब्रजानंद जैसे डटले आंडा करते दंडी स्वामी थे, ये कहते इसे भी नाराज हो गए, कह ये तो झूठ बोला है, हमारी बेइज्जती करता है। अब आखिर में राजा सिकंदर बीच में आ गया, बोला भाई लड़ो मत, तुम अपनी शक्ति परीक्षण करो, कोई था फैसला हो जाए, झगड़ा क्यों करते हो। तो उन पंडितों ने क्या कहा कि हम एक ऐसे पत्थर रख, एक पत्थर की सुंदर शिला के ऊपर मूर्ति रखेंगे भगवान की, और फिर हम अपनी पूजा करेंगे, ये अपनी पूजा करो, भाई जो उनको अपनी तरफ बुला लेगा उसी की जो है ना भक्ति खरी मानी जाएगी। अब क्या बताया, काशीपुरी के साले गम सभे समेटे आए, क्या बताते हैं, पंडित और बैरागी सब हुए इकट्ठे आने, गरीब दास गुल एक गुल भया चौकी धरी पासान, पत्थर की चौकी रखती उसके ऊपर एक सोने की सुंदर सी मूर्ति रखती। अब वो लगे पंडित जी, परमात्मा बोले भाई तुम ही कर लो अपने जंतर मंत्र, हम गरीब आदमी जुलाहे छोटी जात के, रविदास और कबीर साहब एक कुंड में बैठ गए, कहने लगे हम तो छोटी जात के हैं भाई, हमारे द्वारा भगवान क्यों कराओगे, बे सूर्या से दो के पास तुम पंडित हो, नाए धोए चमकने से बढ़िया, तुम्हारे भगवान आपके पास चले जाएंगे, हम तो हारे पड़े हैं हार जाएंगे, मारियो से छोड़ दियो, न्यू करके एक तरफ बैठ के, एक तरफ वो पंडित जी तीन तीन तिलक लगाकर नहा धोकर दूर आकर चौकी को और गंगा जल पे मूर्ति भगवान की धोकर और बैठ के हवन कर। इतने में कुत्ता आया उन भगवान पर मूत कर डांट ठोक गया। अब उन्हें सोची भाई भगवान देश परमात्मा तो भ्रष्ट हो गया, वह फिर एक घंटे तीन दोएर मांझे फिर रख के बैठ के, उन तो नो रहे थे ना आज इनकी पोल पाड़नी है कबीर की। अब उन्हें कह बेरा था फिर भी काम बिगड़ जाएगा, दूसरी बार धर का क्या रहो, इतने फेर कर गया काम, परमात्मा की कृपा थी सारी, दो बार तीसरी बार फिर मूत गया, दो घंटे तो उनके मांझे दौड़ में लगे रहे। फिर राजा ने सिपाही चारों तरफ खड़े कर दिए, भाई तुम क्यों कित मर गए थे, करड़े हो यहां आन नहीं देना किसी को भी, आज इनका फैसला हो जाता है। तो फिर वो ने सारे जंतर मंत्र कर लिए, गुगड़ खेवे धूप खेवे जोत लावे जंतर मंत्र पसीने आ गए, वो टस से मस वो चौकी नहीं हुई, वो पत्थर की टुकड़ी नहीं हुई। तब सिकंदर को मालूम था कि समर्थ बैठे हैं, तब सिकंदर ने कहा परमात्मा आप प्रयत्न करो। ने बोले जी हम गरीब आदमी कम छोटी जाति के नाए धोए भी को ना, हमारे पास भगवान कैसे आएंगे। तो सिकंदर लोधी बोला परमात्मा कर दो फैसला इनका, ये मेरे सिर में दर्द रखेंगे ना। थे तब परमात्मा ने कहते आप आरती आप साजे आप किंगर आप बाजे आप ताल जानजन कारा आप नचे आप देखने हारा, अपनी स्तुति आप ही कर रहा है। इतने में वो नो के नो पत्थर उठ के, वो देवता भी उठ के पत्थर परमात्मा के सामने वह टुकड़ी डट गई और वो देवता उठ के परमात्मा की गोदी में सीने तला के बोलो सतगुरुदेव की जय। काशीपुरी के सालग सब बहे चमटे आए, गरीब दास कुत्ता तहां मुत टांग उठाए। वहां पर कुत्ते ने कहते उनके भगवाना पर पेशाब कर दिया। कुत्ता मुख में मूते है कैसा सालग राम, भगवान वधी थारा किसा भगवान जी के मुंह में कुत्ता मूत है। कहते काशी कुत्ता मुख में मोते है यू कैसा है भगवान, गरीब दास जो लागे है थरी गई अकल किस गाम है। थारी बुद्धि कौन से गामदारी ने कम थर आगे दिए भगवान तो कुत्ता नो आ गया। दो दा फिर निके किए फिर आमारी धारे, गरीब दास उस मंडली में वो जुल्हा हसे चमारे। कहते उन दोनों की उत्कृत देख कर वो जुल्हा और चमार रविदास और कबीर साहब हंस रहे खूब, अगर देखे थरे भगवान भाई। तीन बार मुख मूतिया सालग बहे असू दे, गरीब दास चहु वेद में है रति नरंचक बुद्ध। भ्रष्ट हुई काशी सब है ठाकुर कुत्ता मूत, गरीब दास पत्थर चले है नागा मिश्री सूते। होम दीप होम धूप और दीप कर वो देख रहे सर पीट, गरीब दास विधि साधे कर वो फूके बहुत अंगीठ। निर्यवन करें कति उन्हें सिर पटक लिया, वो टस से मस उनकी वह चौकी नहीं हुई। धूप हो धूप और दीप कर भेक रहे सर पे, काशी के पंडित लगे की ना हो हजूम, गरीब दास उस पूरी में है परी अदक्षी धूम। चौकी सालग राम की मस्की नहीं एक तिल, गरीब दास के बाद साहा सटगर्सन कुछ सिल। धूप दीप मंदे पड़े होम सिराए भेख, गरीब दास ये जुल्हदी की साहेब राख टेक। आप राख टेक पद सद सत कबीर रैदास तू कह सिकंदर साहा, गरीब दास यो तो भक्ति सच्चे तुम ले लीजो सोमजे बुलाए। सिकंदर बोले भगवान आपकी भक्ति मैं मानता हूँ, आप तो मालिक हो, आप इस झंझट में मिटा दो, इसे कर अपनी तरफ बुला दो। कह कबीर सुन बादशाह सुन हमारी अरदास, गरीब दास कुल नीचे कह क्यों कर आवे हर पास। हम तो नीचे कुल में हमारे पास ये भगवान क्यों कर आमगे जो पंडिता की गोद में रहने वाले। कहते दीन बचन आधी ने बनते बोले मुद्रे बहने, गरीब दास कुंडल हिरद गगन चढ़े गृद गैन। लिया पखावज ताले सोरे तंबूरे झनकारे, गरीब दास गावन लगे वा जुल्हा और चमारे। देने तो रे दास हैं और बाम खड़े कबीरी, गरीब दास सुर बांध के फिर लाया राग मिला राग तस्मीर। राग रंग साहेब भय राग रंग साहेब भयाल गाया लीला की नीतत काल राग रंग साहेब गाया लीला की नीतत काल गरीब दास काशी पूरी की वो सला पगो न्यू चाल अपने आप चल पड़ी नो झटके से देकर वहां पहुंच गई। सौंद चली बिन पगों से जुल्हे लीनी गोद गरीब दास पंडित पटक चले अठारह बोदे वो पंडित उड़े पटक गए उन 18 पुराणों ने भी वेदों को भी वहीं पटक कर जाते रहे और कहते हैं जुल्हे और चमारे का ये भक्ति गई किस हेत गरीब दास इन पंडितों का रह गया खाली खेत के इनकी भक्ति शास्त्र अनुकूल नहीं थी शास्त्र विरुद्ध थी। पवित्र सदग्रंथ प्रमाण देते हैं गीता जी कहती है शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं चाहे वो कितना ही सूझबूझ और आपकी तरफ से तड़क भड़क का दुनिया को आकर्षित करने का हो पर उससे तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा ना कोई कार्य सिद्ध हो ना तुम्हारी मुक्ति हो और न ही तुम्हें कोई सिद्धि प्राप्त हो तुम्हारा कार्य सिद्ध नहीं हो ना ही तुम्हारा कोई काम सरे। खाली खेत कुहेत से सत बीज बना क्या होवे गरीब दास एक सत नाम बिना थारी पैज पे छोड़ी होवे उस सत्य नाम बिना तुम्हारी नो बिरान माटी हो तुम इसलिए हारे हो तुम्हारे पास सत भक्ति नहीं है। इस प्रकार परमात्मा ने उन नादानों को बहुत समझाना चाहा पर कहते हैं परमात्मा राज प्रजना सहज है और सहज त्रिया का नेह मान बड़ाई ईर्षा भाई दुर्लभ तजना ये अरे छुट्टी तो भगवान मिला मिलाया है कतई जब नादान मान जाते इतनी भी ना देख कर मरी हुई गायें जीवित कर दी बत्तिया जीवित कर दिया और कुत्ता जीवित कर दिया और वो शेख की मरा पड़ा तो उसका ला तुम्हारी वो जिंदा कर दिया और उनकी अब्रान माटी सरेआम ऐसी बेइज्जती करवा के फिर भी ना माने ना जनता मानने दी पर ईव डूंडा पाटेगा ईव सारे पुनर्मा शिक्षित हैं इन पाखंडियों की कोई ना सुने अब पहचानेंगे अपने भगवान को चलेंगे सतलोक को। बोलो सतगुदेव की जय। कबीर देव कबीर परमेश्वर हम काल जाल में फंसी हुई पुण्य आत्माओं को भोली भाली आत्माओं को अपने सतलोक के विषय में स्वयं ही जानकारी देने के लिए आते हैं और हमारे इन कष्टों को देखकर वो बहुत दुखी होते हैं क्योंकि हम इस काल के धोखे में जाल में फंस चुके हैं। इसने हमारे ऊपर एक सम्मोहन क्रिया कर रखी है इसने हमें विवश किया हुआ है अपने तीनों पुत्रों के माध्यम से रजगुण ब्रह्मा के रजोगुण से हमें इतना प्रेरित किया हुआ है कि यहाँ की सुख सुविधाएं कार कोठी बंगले दो कोठी बना ली फिर चार बना लूं 10 एकड़ जमीन होगी 20 एकड़ बना दूं और फिर भक्ति करते नहीं उसी जमीन में फिर चूहे बनकर उसी फसल को कुतर रहे होते हैं। परमात्मा कहते हैं ये तुम्हारा मूल ठिकाना नहीं है आप यहां के रहने वाले नहीं हो तुम बहुत अच्छे लोग के रहने वाले थे तुम भूल गए उसको क्योंकि काल ने तुम्हें यहीं का यही ज्ञान और यहीं की ये अस्थाई सुविधाओं को देकर के आपको अनजान बना दिया इससे ज्यादा आपकी दृष्टि काम करती ही नहीं ना बुद्धि जाती और फिर अपने नकली दूतों को भेजकर यही वेदों विरुद्ध शास्त्र विरुद्ध ज्ञान का विशाल प्रचार करवा दिया। परमात्मा बताते हैं उस सतलोक में कितना सुख है, उस सतलोक में कितना सुख है। शंखो लहर मेर की उपजे कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। यहां कभी कभी किसी किसी दिन एक आत्मा में ऐसी हिलोर उठती है, कोई भी पराया नजर नहीं आता, कोई भी बुरा नजर नहीं आता, किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं रहता, वो होती है अक्षीणिक, थोड़ी सी देर की होती है, पर वो जो आनंद है इस पृथ्वी पर आपको कहीं नहीं मिलेगा। या तो प्रभु की भक्ति में होगा, या फिर वो पिछले संस्कार से कोई एकादी ही लहर उठती है, वो लहर उठती है। उस हिलोर के, उस लहर के जाते ही उसी तरह फिर वही कुबाड़ भर जाता है, उसने ऐसे क्यों कहा, उसने ऐसे कर दूंगा, उसको ऐसे कर दूंगा, दो के बीच बना दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वही मच्छर से फिर लड़ने लग जाते हैं, मच्छर काटने लग जाते हैं इन बुरे संस्कारों के। यहां काल भगवान ने हमें महापीड़ित किया हुआ है, हम समझ नहीं पाते, हम समझ नहीं पाते। गरीबदास जी कहते हैं, ये संसार समझदा ना ही कहंदा श्याम दोपहरे नो। और गरीबदास ये वक्त जाते रोग इस पैरे, दोपहर को ये श्याम मान रहा है, दोपहर ज्येष्ठ मास की दोपहर जिसमें धूप कड़ाके की गिरती है, और जिसने शराब पी रखी है वो बाहर धूप में पड़ा पड़ा भी नुकह मौज हो रही है, मौज हो रही है, मत छेड़ा मुझे, आनंद आ रही है। तो ऐसे काल ने हमें ये अक्षीणिक सुख की भांग प्यारा की है, इस भांग ने पीकर हम महाकष्ट को भी ये सोचते हैं कि मौज हो रही है। जैसे रिश्तेदार कचहरियों में मिलते हैं, कोर्ट में मिलते हैं, किसी अचानक मिल जाते हैं, हाथ मिलाते हैं, क्या हाल है, ठीक हो, अब ठीक ठाक, मौज हो रही है, और हाथ हटते ही चिंता हो जाती है, गवाह पता नहीं कैसे बयान देगा, अब तक वकील नहीं आया, आवाज लगन हो रही है, यानी धड़क धड़क होने लग जाती है, और फिर भी नौका ठीक ठाक कचहरियों में, ठीक ठाक का कौन सा मेल, कचहरियों में तो मां दुखी प्राणी जाते हैं जिनका, या तो किसी ने आप दुखी कर रहा होगा, या वो किसी ने सता रखा होगा। रिश्तेदार मिलते हैं हॉस्पिटल में, मेडिकल में, एक दूसरे को कुशल पूछने जाते हैं, किसी का कोई बालक बीमार हो जाए, कोई रिश्तेदार वैसे कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, तो वहां भी हाथ मिलाते हैं, और ठीक हो, हका ठीक ठाक, एक बालक है बस, बचे भरोसा है, और ठीक ठाक और बालक बचे भरोसा है, ठीक ठाक ये रहा। फिर तो परमात्मा कहते हैं इस काल के लाख लोक में कितने ठीक ठाक नहीं, ब्रह्मांड 21 आग लगी है या कृत्रिम बाजी सभी ठगी है। 21 ब्रह्मांड में तो हमने कोई सुखी ठीक ठाक देखा नहीं, भगवान बताते हैं। भाई तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं मन सबका किया विवेका हो। घाटे बादे सब जग दुखिया के घर ही बैरागी हो, सुख देव ने दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी हो। जंगम दुखिया जोगी दुखिया तपस्वी को दुख दूना हो, आशा तृष्णा सबको व्यापे कोई मैल ना सुना हो। सच कहूं तो जग ना माने झूठ कही ना जाई हो, ब्रह्मा विष्णु ये शिव जी दुखिया जिन ये रहा दलाई हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया रंक दुखी बपरीती हो, कह कबीर और सब दुखिया एक संत सुखी मन जीती हो। परमात्मा कहते हैं यहां इसी किस ब्रह्मांड में कोई जीव सुखी नहीं है, अगर यहां भी कोई सुखी है तो वही संत वो भक्त आत्मा सुखी है जिसने मन जीत लिया। मन कैसे जीता जाता है? सतगुरु के वचन पर चले, गुरुदेव के वचन पर चले, बुराई त्याग दे। मन चाहता है कि फिर देखेंगे, इब का नहीं चलते सत्संग में, फिर देखेंगे फिर देखेंगे। मन चाहता है एक गुट्टी लाडू के फर्क पड़े है नाम में, एक कबीड़ी पी है नाम। बोला जी मेरा के नाम टूट गया, यहां आकर पूछते हैं, कोई दूसरा कह देता है ना भी तेरा नाम टूट गया, तेने बीड़ी पी ली। तो वो पूछता जी मन तो एक कबीड़ी पी थी कि मेरा नाम टूट गया, कमाल की बात है, तेरा वो करेक्शन कट जाएगा। तो ऐसे जरा से भी कोई फाउल पॉइंट आप होगे तो आपका नाम नहीं रहेगा, आपका कनेक्शन कट जाएगा, फिर आपको हानि होती रहेगी। आप सोचोगे हमने नाम भी दे रखा था फिर भी कोई सहयोग नहीं मिल रहा, क्योंकि आप आउट हो चुके हो। उसका तरीका है दोबारा उपदेश लेवे, फिर कति भूल कर गलती नहीं करे। तो जो पुण्यात्मा परमेश्वर के चरणों में रह रह कर आ रही है, इन्होंने मन जीत लिया है, इन्होंने मन जीत लिया है। और मन के जीतने का यही तरीका है कि सत्संग में अवश्य आए। मन की खुराक है शराब पीना, मांस खाना, ताश खेलना, धन जोड़ जोड़ कर धरना, कितो गप्पे मारना, कितो दो के बीच बनाना, सारा दिन तगड़मबाजी में रहना। तो ये मन को पसंद है, रागनी सुनना, गाने सुनना, अच्छे मंदे विचार, चाहे सारा दिन बकवाद करें जाओ, बड़ा राजी रहेगा ये। और मन की खुराक है परमात्मा की चर्चा, दान करना, सेवा करना। तो हमने क्या कर रखा था, ये मन तो झोटा पाड़ दिया, और आत्मा की खुराक हमने दी नहीं। मन की खुराक सारी ही मन की खुराक है एक परमात्मा की भक्ति कथा सत्संग के अतिरिक्त। आदरणीय गरीबदास साहिब जी के पास एक किसान गया, कहने लगा भगवान बड़ी कोशिश करता हूं और सत्संग में आने को दिल नहीं करता और मन नहीं मानता, बहुत कोशिश करता हूं। परमात्मा ने कहा कि आप सत्संग में आते रहिए और हमने जो क्रिया आपको बताई है इसको ज्यादा कीजिए, भक्ति कीजिए, सत्संग में अवश्य आइए, सेवा कीजिए, दान कीजिए। आपने क्या किया हुआ है कि जैसे आपके दो बैल हैं, किस परमात्मा ने गरीबदास साहिब जी ने किसान से कहा, किसान ने कहा हाँ जी, तो उनमें से एक बैल दूसरे बैल को से तगड़ा है, तो आप क्या करते हो जब उनको चारा चला चराते हो? कहने लगे जी जो एक बैल है बड़ा वो तगड़ा, वो दूसरे को खाने नहीं देता जब हम एक स्थान पर चारा डालते हैं खेतों में, तो आप क्या करते हो? गरीबदास साहब ने पूछा कि मैं उसको रस्से से टाइट बांध देता हूं और उसको थोड़ा सा ढीला छोड़ देता हूं, उसको आधे से ज्यादा उसका मुंह नहीं जाने देता। तो परमात्मा कहते हैं इसी प्रकार इस मन की खुराक कम कर दे और आत्मा की खुराक ज्यादा कर दे, फिर ये दो आत्मा तगड़ी हो जाएगी, या मारे कोई ना उसने, या अपना अपना काम करेगी और उसने साथ ही रखेगी। तो ऐसे परमात्मा ने कहा इस मन को जीतने का तरीका सत्संग में ज्यादा आइए, ये आत्मा उभर जाएगी, मन मुरझा जाएगा, फिर इसकी नहीं चलेगी, फिर शर्मिंदा हो जाया करेगा आत्मा, ये बुराई सोचेगा, आत्मा धिक्कार देगी ज्ञान आधार पे, फिर ये सीधा होता चला जाएगा। तो कहते हैं कह कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। तो परमात्मा कहते हैं संखों लहर मेर की उपजे कहर नहीं जा कोई, दास गरीब या चले अविनाशी, सुख का सागर सोई। इसी ज्ञान को परमात्मा दिया करते थे, समझाया करते थे। ये पांच दिन का जो समागम आज समापन होने को जा रहा है, ये किस उपलक्ष में था ये फिर थोड़ा सा आज याद दिलाएं आपको। ये जो समागम है प्रतिवर्ष हुआ करेगा और इसमें दो उद्देश्य हैं, दो उपलक्ष होते हैं। एक तो एकादशी माघ शुक्ल माघ एकादशी माँ उतरते की चांदनी एक एकादशी ग्यास को पूर्ण परमात्मा कबीर देव 120 वर्ष मनुष्य की तरह एक लीला करके अपना तत्व ज्ञान प्रचार करके प्रभु वाले जो गुण हैं वो प्रमाणित करके मगर उत्तर प्रदेश में गोरखपुर एक जिला है, गोरखपुर शहर से 20-25 किलोमीटर की दूरी पर एक मगर नगर है छोटा सा। पहले वो जिला बस्ती में पड़ता था, अब उसी परमात्मा की महिमा के कारण वहां का उसका नाम कबीर नगर जिला रख दिया है, जिला कबीर नगर नाम रख दिया। पहले जिला बस्ती में पड़ता था उत्तर प्रदेश में। उस मगर के अंदर परमात्मा ने एक तो काशी नरेश वीरदेव सिंह बघेल और बिजली खां पठान मगर नवाब की उपस्थिति में साथ में लाखों दर्शकों की उपस्थिति में परमात्मा ने शरीर छोड़ा था। नीचे एक चद्दर बिछाई थी और उसके ऊपर श्रद्धालुओं ने दो दो तीन तीन इंच फूल बिछा दिए थे, अपने भगवान हमारी इस पर विश्राम करेंगे। परमात्मा ने एक चद्दर ऊपर ओढ़ी थी और परमात्मा नहीं पाए थे क्योंकि दोनों राजा लड़ने को तैयार हो गए थे। हिंदू कहते थे हम परमात्मा का शव अपने पीर का शव अपने हिसाब से लेंगे, काशी में हिंदू रीति से अंतिम संस्कार करेंगे। मुसलमान कहते थे हम शव को नहीं देंगे, ये हमारे क्षेत्र में का शरीर अंत हो रहा है, हम यही मुसलमान विधि से इनका अंतिम संस्कार करेंगे। तो प्रभु ने पहले समझाया था कि निकम्मियों 120 वर्ष तक मैंने यही ज्ञान दिया था तुम्हें, तुम एक पिता की संतान हो, कोई हिंदू मुसलमान दो नहीं है, तुम अपने आप अपने दुश्मन बने बैठे हो इस काल प्रेरणा हो इस काल से प्रेरित होकर। और खबरदार जब तुमने मेरे शव के ऊपर झगड़ा किया तो चाहे इसको आधा आधा काट लेना। परमात्मा ने लीला की, आकाशवाणी की ऊपर जा लिए, जब वहां से कहा कि देखो चद्दर उठा के इसमें कबीर नहीं है, क्योंकि काशी के वो पांडे कहा करते थे जो मगर मरता है वो गधा बनता है, काशी में जो मरता है वो स्वर्ग जाता है। परमात्मा कहते हैं सतभक्ति करने वाला प्राणी चाहे कहीं पर भी प्राण त्याग दे अपने इष्ट देव के लोग को ही जाएगा, ये तुम्हें भ्रमित कर रही है। उस भ्रमणा को खत्म करने के लिए परमात्मा ने वो लीला शरीर त्यागने की वहां की थी। ऊपर आकाश में जब देखा परमात्मा जा रहे हैं तेजो में शरीर युक्त और कह रहे हैं देख लो तुम अपने पतरे भी निकल के मैं कहां जा रहा हूं, स्वर्ग में जाऊंगा या गधा बनूंगा। तब चद्दर उठाकर देखा तो सब के आकार के तेजों में बहुत सुगंधित फूल मिले ताजे ताजे। थोड़ा मंदा कर गए। इस प्रकार परमात्मा ने वो लीला की थी। हिंदू और मुसलमान आपस में सीने से लगकर रो रहे हैं जैसे बच्चों के माता पिता दोनों एक का दिन मर जावे, इतना दुख व्यक्त कर रहे थे और कह रहे थे हम महामूर्ख थे, हमने परमेश्वर को पहचाना नहीं। आज वो दिन है, वो एकादशी का वो दिन था जिस दिन यह समागम प्रारंभ हुआ 9 फरवरी को, और आज का दिन है मेरे पूज्य गुरुदेव आपके दादा गुरुजी आदरणीय पूजनीय स्वामी रामदेवानंद जी महाराज का जन्म दिन भी है, और इसी दिन उनको 16 वर्ष की आयु में उपदेश भी प्राप्त हुआ था। यही पूर्णमासी माघ उतरते की पूर्णमासी को वो अपने समय से ही अपने इस उपदेश दिवस को मनाया करते थे, आज वो भी उपलक्ष्य है। विशेषकर हम अपने कबीर परमात्मा की महिमा ही आपको सुनाएंगे। परमात्मा कहते हैं कि जो साधना तुम करते हो इससे न तो ब्रह्मा की जन्म मृत्यु मिटी है, न शिव की न विष्णु की, और आपकी तो मिटेगी कहां। और जिस भगवान को तुम वेदों अनुसार ब्रह्म जिसको पूर्ण परमात्मा मान रहे हो वो ब्रह्म भी कहता है मेरी भी जन्म और मृत्यु है अर्जुन, गीता जी के अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में, अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में स्पष्ट वर्णन किया कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। और ये ना सोच के ये राजा लोग पहले नहीं थे, ये सैनिक नहीं थे, या तू नहीं था या मैं नहीं था, अर्थात हम पहले भी थे आगे भी होते रहेंगे। गीता जी के अध्याय नंबर 2 के मंत्र 17 में कहा है कि वास्तव में नाश रहित तो उसको जान जिसको मारने में कोई समर्थ नहीं है, और जिससे सारे ब्रह्मांड व्याप्त है, सारे ब्रह्मांडों का वो संचालक है। गीता जी के अध्याय नंबर 15 के मंत्र नंबर 1-4 में यही प्रमाण दिया है कि ऊपर को जड़ वाला वो तो पूर्ण परमेश्वर है, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है, रजगुण, धर्मा, सतगुण, विष्णु, तमगुण, शिव जी। इस वृक्ष के विषय में जो संत जानता है कि तना क्या है, डार क्या है, टहनी कौन है और मूल कौन है, जो ये निर्णय देगा आपको न्यारा न्यारा, वो समझ लेना सह वेदवित वो तत्वदर्शी संत है, वो वेद का ज्ञाता है। फिर उस तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक की फिर मृत्यु जन्म नहीं होते, वो संसार में लौट कर नहीं आता, और जिस परमेश्वर से सारे ब्रह्मांडों की ब्रह्मांड विस्तार को प्राप्त हुए, अर्थात जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है। गीता ज्ञान दाता कहता है मैं भी उसी की शरण में हूं, तुम भी उसी की भक्ति करो। गीता जी अध्याय नंबर 18 के मंत्र नंबर 66 में कहा कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति और सतलोक को प्राप्त होगा, उस सुख सागर को प्राप्त होगा। संखों लहर मेर की उपज कह नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। गीता जी के अध्याय नंबर 63 में कहा कि अर्जुन ये 18 अध्याय तेरे को सुना दिए गीता जी के, अब तू सोच ले तने के करना है, अब तू विचार कर ले मेरी शरण में रहना है तो उठा हथियार और कर युद्ध, नाम भी जप मेरा और युद्ध भी कर, इस प्रकार तू मुझे ही प्राप्त होगा। गीता जी के अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 7 में, और उस परमात्मा की शरण में जाना है। गीता जी के अध्याय नंबर 8 के 8-9-10 में स्पष्ट वर्णन किया, उस कबीर देव कवियम उस कबीर परमात्मा को प्राप्त करना है तो किसी तत्वदर्शी संत से उपदेश लेकर के गीता जी अध्याय नंबर 4 के 34 में जो संकेत किया है, फिर उस साधना को करने से तो उसी को प्राप्त हो जाएगा। फिर कहा कि 8-64 में श्लोक में कहा है कि मेरा भी पूज्य देव वही परमात्मा है जिसके विषय में 98-62 श्लोक में तुझे संकेत दिया है, मेरा पूज्य देव भी वही है। 18-65 श्लोक में फिर कहा कि मेरी शरण में रहना है तो मेरे में मनवा लाओ और मेरे को नमस्कार कर, तो मुझे ही प्राप्त होगा, चिंता ना करे। 18-66 के फिर 66 श्लोक में कहा कि जब उसकी शरण में जाना है तो सभी मेरे लेवल की पूजा मेरे में छोड़ दे, ये दास आपको 3 मंत्र का जाप देगा। प्रथम आपको जो नाम दिया जाता है वो आपके यहाँ की सुख सुविधाओं के लिए दिया जाता है कि जो आपका कनेक्शन बंद हो गया, भगवान से राहत नहीं मिल रही, वो कनेक्शन आपके जारी हो जाएंगे। जैसे आपने टेलीफोन का बिल नहीं भर रखा और आप लाखों रुपये बिल हो गया और आप एकदम पे नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट एक स्कीम बनाती है कि कोई गारंटर इसका मिल जाए और वो पैसे जमा कराता रहे किस्तों में तो उसका कनेक्शन कर देंगे। ऐसे ही जैसे बिजली का कनेक्शन आपने ले रखा है, किसी कारण से आप पैसे नहीं भर पाए, कनेक्शन कटा हुआ, सुविधा बंद हो गई, तो आपको कोई गारंटर ऐसा मिल जाए कि तुम इसका चालू करो कनेक्शन और इसके तुम्हारी किस्तों में पैसे देता रहेगा, तो ये 10 आपका इन ब्रह्मा विष्णु महेश का गारंटर बनेगा यहाँ, और फिर आपने अपने इस कमाई से उनका बिल भरना है, ये तुम्हें सुविधा प्रदान करते रहेंगे। ये पहला मंत्र आपको इसलिए दिया जाता है। इसमें प्रथम और लास्ट के 2-2 मंत्र हैं। इस मंत्र में पहला और लास्ट का जो नाम है वो आपकी भविष्य निधि में जमा होगा, सतलोक जाने वाले कमाई के लिए होगा। किसी कारण से पहला नाम जपते जपते भी कोई प्राण छोड़ जाता है तो भी उसका व्यर्थ जीवन नहीं जाएगा, मानुष शरीर उसको अवश्य ही मिलेगा, चाहे जिसने 10 दिन भी नाम, चाहे उसने 1 दिन भी जाप कर लिया है, मनुष्य जीवन उस प्राणी को गारंटीड होगा। ये इतना कीमती नाम है। फिर सतनाम आपको दिए जाएंगे 2 मंत्र। गीता जी अध्याय नंबर 17 के मंत्र 23 में कहा है, ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ। ब्रह्मणे माने पूर्ण परमात्मा के जाप का, सिमरण का, 3 मंत्र का निर्देश है। निर्देश माने फाइनल फैसला। निर्देश के अंदर संकेत और आदेश दोनों समावेश होते हैं, नथिंग एल्स। ओम तत् सत इति निर्देश है, ये एक आदेश है परमेश्वर को पाने का, निर्देश है, संकेत है तुम्हें। ओम तो ये सीधा ब्रह्म का जाप है, ये तो खुल्लम खुल्ला कहा जाता है। तत् और सत ये गुप्त रखा है। तत् नाम है ये परब्रह्म की भक्ति का, और सत नाम है ये सत सत शब्द ये पूर्ण परमात्मा की भक्ति का। ऐसे ये कह रहा कि मेरे लेवल की जो भक्ति है वो मुझे छोड़ दे, ओम नाम का जो जाप आपने करना है ये पूजा नहीं है ब्रह्म की, ये मजदूरी करनी है। और जो दूसरा नाम दिया जाएगा वो परब्रह्म का होगा, सत्य वो गुप्त है। ये सत कई अनजान ओम तत् सत ऐसे जाप देते हैं, वो तनाड़ी है ही, जिन्हें कहेगा कौन ही बेरा में मूर्ख बना रहे सारी दुनिया को, आप भी नरक में जाएंगे। ये नीम हकीम थे, इनको कोड वर्डों का ज्ञान नहीं, तत्व ज्ञान नहीं, दुनिया को गुमराह कर बैठे। आप भी दोषी महादोषी बन गए गुमराह करने के, और भोली आत्माओं का जीवन व्यर्थ कर दिया इन लोगों ने। ओम ब्रह्म का जाप है, तत् और सत ये सांकेतिक है, गुप्त है, ये ब्रह्म भी नहीं बता सकता, नहीं दे सकता, इनको ये अधिकारी नहीं है। अनधिकारी के दिया हुआ कोई भी कार्य सफल नहीं होगा। आपने एक सिंपल सा एफिडेविट बनवाना है या डोमिसाइल बनवाना है, ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवाना है, तो अथॉरिटी जो उनकी गवर्नमेंट की तरफ से मान्यता प्राप्त है वही करेगा तो वो कामयाब होगा, नहीं तो व्यर्थ है। नहीं तो उसे भी बड़ी बना देते हैं डुप्लीकेट, पर उस समय पर काम नहीं देंगे। इसी प्रकार ये नकली संतों के दिए हुए नाम वहां सब फेल हो जाएंगे, तो वो ये चलेंगे नहीं वहां। तो ओम नाम ब्रह्म का है, तो ब्रह्म काल ये कह रहा है कि उस परमात्मा की शरण में जाना है, तो मेरा जो ओम नाम का जाप तूने उस परम संत से लेकर कर रखा है, तो वो ओम नाम की कमाई मेरे में छोड़ दे, फिर मैं तुझे सब ऋणों से मुक्त कर दूंगा। हम क्या करते रहे ऋषि बनकर, ओम नाम का जाप यहां करते खूब डट के, और फिर इसकी कमाई हम स्वर्ग रूपी होटल में खाया करते, महास्वर्ग में चले जाते, हजारों लाखों वर्ष वहां ठाठम ठाठ करते, काल ने तो बेकूफ बनाने तो मतलब है हमारा, तो वहां खूब मौज। उस होटल में स्वर्ग में जो सुविधा है यहां तो कुछ भी नहीं है, इतना सारे कुकर्म वहां पर तो ना उनके, शराब वहां पर, नाचने गाने, बकवाद, घूमना फिरना, झील सरोवर, फूल बाग बगीचे ठाठम ठाठ कर रखे हैं, पर वो जेब कटे है सारक की, उसका रोजाना की डाइट फिक्स कर रखी है, एक दिन में इतना आहार करेगा तो इतना तक खर्चा कटेगा, ज्यादा करेगा तो ज्यादा कटेगा। इस कारण से उनको फिर 3 साल पहले अलार्म बजा दिया जाता है कि अब तेरा केवल 3 वर्ष शेष है स्वर्ग में रहने के। जब उसको ये पता चल जाता है 3 वर्ष शेष है, फिर उसको ये भी पता होता है फिर नरक भी जाना है, क्योंकि वो पाप भी भोगने होंगे। वो 3 साल लास्ट के स्वर्गवासी को ओए होए जहर हो जाता है, विष बन जाता है, वो सब बड़े ठाठ दिखे, वो कुछ नहीं, उसको दिल अच्छा लगता, फिर उसको पता होता है जाना पड़ेगा जाना पड़ेगा। 3 साल से पहले उसको नहीं बताया जाता, और यो 3 साल पहले बताने के बाद इसकी गिग्गी बन जाती है, वो स्वर्ग भी उसको 3 साल नरक ही लगता है। तो हम क्या करते रहे, ओम नाम का वहीं खाक खुरच कर देते और फिर कंगाल हो जाते। परमात्मा कहते हैं अब नहीं करेंगे हम इसको, बर्बाद नहीं करेंगे, यहां की कोई सुविधा हमने नहीं चाहिए। तो ओम नाम की जो कमाई हम करेंगे, ये सर्व धर्मान परितज माम एकम शरणम व्रज, तो है सब मेरे लेवल की सभी पूजाओं को, धार्मिक पूजाओं को, धार्मिक कर्मों को मेरे में छोड़ दे। अब ये अनुवादकर्ताओं ने क्या अनुवाद किया कि बेटा सभी धर्मों को छोड़कर तू मेरी शरण में आ जा, वर्जमाने जाना होता ये कहते आ जा, सारे उल्टे अनर्थ कर रखे इन लोगों ने। अब उसमें धर्म कोई था ही नहीं, जब गीता जी बोली जा रही थी धर्म कौन से छोड़ने थे, ये तो सब धार्मिक मेरे लेवल की जो धार्मिक कर्म है वो छोड़ दे, वो धार्मिक पूजाएं जो धर्म तूने कर्म किए हैं शुभ कर्म, और उस परमात्मा की शरण में जा, फिर मैं तने को नहीं रोकूं, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, मेरा कर्जा दे दे तू जा, और मेरी शरण में रहना है तो बैठा हथियार युद्ध करना है पड़ेगा, कर्म दंड भोगना है पड़ेगा, जन्म मृत्यु तेरी मेरी वही रहेगी। साफ कर दिया उसने तो उस परमात्मा के चरणों में जाने से क्या सुख होगा। परमात्मा कहते हैं यहां की साधनाएं करते करते कोटि जन्म तन भर मत होगे कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबया बोरे कौआ हंस बुगारे, मन तू चल रे सुख के सागर जा शब्द सिंधु रत्नागर। चल उस सुख के सागर सतलोक में जहां सुख ही सुख है, सुख ही सुख है, शब्द सिंधु रत्नागर, वो अमृतव का शब्द माने अमृतव का वहां सिंधु है, अर्थात वो कभी खत्म होने वाला नहीं है, वहां सब सुखों की आगार है, सुख आगार माने डीपू है, वो सुख सागर है, शब्द सिंधु रत्नागर यानी मुक्ति रूपी उन रत्नों का आगार माने खान है, डीपू है, नरे पड़े हैं, बहुत ज्यादा वहां सुख है, सुख है। कोट जन्म तन भर मत हो गए कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबया बोरे तू कौआ हंस बुगारे, कोटि जन्म तू राजा की ना मिट्टी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूम लिया ये मिला ना निर्गुण रासा। ये पूर्ण मोक्ष मार्ग तुझे नहीं मिला, आप इतने भी अच्छे साधक रह चुके हो कि जंगल में नगरी से एक रोटी मांग लाए दो चार एक इसमें में जिसने जैसा दे दिया और उसको जाकर के रख दिया। अब उनको ऊपर टांग देते थे वृक्षों में कपड़ों में बांध कर, वो सूख जाती थी, दो तीन दिन तक उन्हीं को पानी में घोल घोल कर पीता रहता था और अपने ओम नाम की वेदों अनुसार साधना करता रहता था। उसके कारण इतनी कठिन साधना भी करके तूने के उपलब्धियां कर ली और फिर भी जन्म मृत्यु नहीं गई। कोटि जन्म तू राजा के न्या मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होके दर दर घूम्या ये मिला ना निर्गुण राशा, इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वंद्रम राया, विष्णुनाथ के लोक को जाके फिर भी उल्टा आया। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, कल आपको बताया था कि सात ब्रह्मा की मृत्यु के उपरांत एक विष्णु जी का देहांत होता है, ऐसे ऐसे सात विष्णुओं का देहांत होने के उपरांत एक शिव का देहांत होता है, ऐसे ऐसे 70,000 शिव का देहांत होने के बाद ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता एक ब्रह्मांड में जो महाब्रह्मा महाविष्णु महाशिव रूप में ऊपर रहता है, इस उस शिव रूप को भी वहां भी ये ऐसे अपने शरीर छोड़ने की लीला करता है, तो फिर एक ब्रह्मांड का पूर्ण रूप से विनाश हो जाता है, ब्रह्म लोक में भी रहने वाले प्राणियों का विनाश हो जाता है, वहां कोई नहीं रहता, इसी एक ब्रह्मांड में पूर्ण रूप से महाप्रलय हो जाती है। तो वो एक युग होता है, एक युग होता है, जब 70,000 यहां के शिव मर जाएंगे तब एक ये ब्रह्म मरेगा, ये ज्योति निरंजन काल मरेगा, और फिर वो परब्रह्म का एक युग होगा। तो तेरा गज वो युग विचार करो पुण्यात्मा, ये तत्व ज्ञान है, और इस तत्व ज्ञान समझने के उपरांत ही आप प्रभु की तरफ तड़प बढ़ाओगे, आपको यहां की कोई चीज अच्छी ना लगे। अब आत्मा को नहीं मानने, और आत्मा नहीं मानेगी तो कट गए यहां से, फिर यहां से जड़ निकल गई हमारी, हम सतलोक से ले जाएंगे। और ज्ञान बिना ये जड़ निकल नहीं सकती, कोई न कोई आस्था बनी रहेगी, नहीं रहेगी आपके अंदर जब ये ज्ञान समा जाएगा। एक ब्रह्मा का एक दिन कितना होता है? 1008 चतुर्युग का वो त्रिज, एक चतुर्युग में 43,20,000 वर्ष होते हैं। ऐसे ऐसे 1008 चतुर्युग का ब्रह्मा का दिन, इतनी ही रात्रि, इसको लंब संप में 1000 चतुर्युग मानते हैं। तो 2000 चतुर्युग का दिन रात हो गया ब्रह्मा का। ऐसे 30 दिन का एक महीना हो गया, 12 महीने का एक वर्ष हो गया, और 100 वर्ष की आयु है ब्रह्मा की। वो तेरा गजब हुई हो, 7,20,000 चतुर्युग की ब्रह्मा की आयु होगी, और इससे 7 गुना विष्णु की, विष्णु से 7 गुना शिव जी की, और ऐसे ऐसे 70,000 शिव जी मर जाएंगे। तब एक काल मरता है, उसने लीला करता है, वो अपना शरीर त्याग देता है, जैसे सर्प कांचली त्याग दिया करे, तो ऐसे फिर दूसरी कांचली उतरण का टाइम आएगा, दूसरा ब्रह्मांड में उसकी जो महाप्रलय होगी, इन सब प्राणियों को जो यहां मर जाएंगे, इन आत्माओं को दूसरे ब्रह्मांड में ले जाता है, वहां फिर नए सिरे से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति करता है। दुर्गा और कालिये यूं के यूं रहते हैं। तो ऐसे उस परब्रह्म का जो, ऐसे एक युग हो गया परब्रह्म का, अक्षर पुरुष का, कौन सा, जो 70,000 यहां के शिव मर जाएंगे, तब एक काल मरेगा। जैसे गीता जी में लिखा है ब्रह्म ने कि अर्जुन मेरे जन्म और मृत्यु, मेरे जन्म अलौकिक है, तू नहीं समझता, और मेरे जन्म को देव, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा कि मेरे जन्म को देवता भी नहीं जानते ना ऋषि जानते, क्योंकि ये मेरे से उत्पन्न हुए हैं। इससे सिद्ध है इसका जन्म तो हुआ है, लेकिन दादा का जन्म, पिता के जन्म को बच्चे नहीं बचा सकते, वो दादाजी बताता है। तो कबीर परमात्मा इसके दादाजी हैं, ब्रह्मा विष्णु में इसके, उन्होंने आकर बताया है इस ब्रह्म का की उत्पत्ति के विषय। तो एक ब्रह्म जब मरता है, 70,000 यहां के शिव मर जाते हैं, तो वो एक युग होता है परब्रह्म का, और ऐसे ऐसे 1000 युग की, नोट चतुर्युग, ये ध्यान रखना। गीता जी के 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में ब्रह्म ने सेंसर युग लिखे, पर यानी परब्रह्म के 1000 युग का दिन 1000 युग की रात्रि होती है, चतुर्युग नहीं है उसमें, ये ध्यान रखना है। इन लोगों ने गलत अनुवाद किया, उसको चतुर्युग लिखा है, इनकी अज्ञानता थी, इन्हें ब्रह्म तो ऊपर जानते, कोई ना ब्रह्म सुना सुना है, इनको उसका ज्ञान नहीं था। तो वो परब्रह्म का इतना ही दिन इतनी ही रात्रि होती है, एक दिन 1000 युग का और इतनी रात्रि, इसी प्रकार 30 दिन का महीना और 12 महीने का एक वर्ष, और 100 वर्ष की आयु है परब्रह्म की, उस तरह जो 100 वर्ष बनेंगे वो परब्रह्म की आयु है। इसलिए परब्रह्म को बहुत ज्यादा स्थाई माना है। गीता जी के अध्याय नंबर 15 मंत्र नंबर 16 में कहा है कि छर चे अक्षर, छर पुरुष ये ब्रह्म, अक्षर पुरुष अविनाशी को कहते हैं, असर जो विनाश ना हो, इसलिए इसको असर भी कहा है। लेकिन नहीं, 17वें श्लोक में फिर कहा कि इन दोनों से वास्तव में अविनाशी तो कोई और है, इन दोनों से भी श्रेष्ठ है, छर से भी और अक्षर से भी। जैसे एक तो चीनी का कप होता है, बड़ा सुंदर भी होता है, एक वैसे कसोरा बना होता है जो कुमार के दया करें वो प्याला सा, उसमें वो तो हमारे शरीर समझ लो, और इस काल का समझ लो ये चीनी वाला कप, और परब्रह्म का शरीर समझ लो सटील का। अब वो चीनी वाले कप से या मूर्ति से, वो सटील वाला कप और मूर्ति ज्यादा स्थाई है, इस उसकी तुलना में उसे अक्षर पुरुष अक्षर कह दिया, अविनाशी कहा। लेकिन नहीं, सटील भी अविनाशी धातु नहीं है, इसको जंग लगता है, समय बेसक ज्यादा लग जाए, वास्तव में अविनाशी तीसरी धातु सोना होती है। ऐसे पूर्ण परमात्मा कभी विनाश में नहीं आता। गीता जी के अध्याय नंबर 8 के मंत्र 17 में यह भी प्रमाण दिया है कि जो तत्वदर्शी संत है वो इस काल के सारे नियम को, सारे इस समय को भी बताएगा, इस पीरियड को भी बताएगा, ये गणना गणित में वही ठीक बताएगा कि युके चक्र है। तो क्या बताते हैं, इंद्र कुबेर इसकी पदवी ब्रह्मा वरुण धर्म राया, विष्णुनाथ के लोक कुंजा के फिर भी उल्टा आया। आदरणीय नानक साहिब जी, सतयुग में राजा अम्बरीश थे, यही पुण्यात्मा। त्रेता में राजा जनक थे, यही पुण्यात्मा। और द्वापर कलयुग में वही पुण्यात्मा श्री नानक जी बने। पहले ये राजा थे, इसके नौकर रहा करते थे इस पुण्यात्मा के, पिछले पुण्य कर्मों के आधार पर। और फिर ये स्वयं नौकर लगे एक नवाब के घर जाके, क्योंकि वह बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी।